नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, ए ग्लिच इन द मैट्रिक्स। जेसिका कास्त्रो की संकलित डरावनी और असमझी घटनाओं की पुस्तक है। कास्त्रो सोशल मीडिया पर आंटी मैट्रिक्स नाम से जानी जाती है, जहां वे लोगों द्वारा भेजे गए विचित्र अनुभवों को सुनाती रही है। यह पारंपरिक उपन्यास या वैज्ञानिक जांच नहीं है। इसकी सामग्री छोटे स्वतंत्र वृत्तांतों पर आधारित है, जिनमें भूत, असामान्य सपने, समय के विचलन, अनदेखी मौजूदगियां, रात में दिखने वाले रहस्यमय प्राणी और ऐसी घटनाएं शामिल हैं जिनका प्रत्यक्षदर्शी कोई सहज कारण नहीं खोज पाता। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि कभी कभी अनुभव हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता की समझ में दरार जैसा महसूस होता है। शीर्षक लोकप्रिय मैट्रिक्स रूपक का उपयोग करता है, लेकिन पुस्तक किसी सिमुलेशन सिद्धांत को सिद्ध करने का दावा नहीं करती। इसका उद्देश्य पाठक को भय, जिज्ञासा और अनिश्चितता के बीच रखना है। कास्त्रो की टिप्पणियां इन कथाओं को एक परिचित मौखिक कहानी सुनाने वाली शैली देती है, जिससे यह संग्रह विशेष रूप से पॉडकास्ट और लघु डरावनी कथाओं के श्रोताओं के लिए उपयुक्त बनता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वास्तविकता में ग्लिच का रूपक और उसका सीमित दावा। पुस्तक में ग्लिच इन द मैट्रिक्स एक वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि उन अनुभवों का सांस्कृतिक नाम है जो व्यक्ति को असंगत, असंभव या असामान्य रूप से दोहराए हुए लगते हैं। यह विचार मैट्रिक्स फिल्म के उस प्रसिद्ध संकेत से जुड़ता है, जिसमें वास्तविकता की व्यवस्था में क्षणिक गड़बड़ी दिखाई देती है। कास्त्रो इस रूपक को व्यक्तिगत अनुभवों के लिए अपनाती है, जैसे किसी स्थान, व्यक्ति, स्वप्न या घटना का ऐसा व्यवहार जो सामान्य अपेक्षा से मेल ना खाए। इसकी ताकत इसी अस्पष्टता में है। हर कथा पाठक को एक ही उत्तर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करती। कोई उसे अलौकिक घटना माने, स्मृति की त्रुटि, संयोग, भय की प्रतिक्रिया या अधूरी जानकारी का परिणाम, पुस्तक इन संभावनाओं को पूरी तरह बंद नहीं करती। यह दृष्टिकोण संग्रह को भूत कथा से कुछ अलग बनाता है। यहां भय केवल किसी राक्षस या आत्मा से नहीं आता, बल्कि उस क्षण से आता है जब परिचित दुनिया अविश्वसनीय लगने लगती है। फिर भी इसे वास्तविकता के वैज्ञानिक स्वरूप का प्रमाण समझना उचित नहीं होगा। अनुभवों का निजी होना, स्मृति की सीमाएं और कथाओं का संक्षिप्त रूप सत्यापन को कठिन बनाते हैं। पुस्तक का बौद्धिक उपयोग इसी में है कि पाठक असाधारण दावों के प्रति खुलापन और आलोचनात्मक विवेक दोनों साथ रखे। दूसरा, पाठक प्रेषित अनुभवों से बनी सामुदायिक डरावनी कथा। ए ग्लिच इन द मैट्रिक्स की सामग्री का आधार कास्त्रो के अनुयायियों द्वारा भेजे गए व्यक्तिगत वृत्तांत है। यह स्रोत पद्धति पुस्तक को एकल लेखक की कल्पना से अलग बनाती है। कथाओं में अलग अलग लोगों की आवाजें, भय और व्याख्याएं आती है, इसलिए संग्रह में अनुभवों की विविधता मिलती है। कोई घटना घर के भीतर की अनजानी उपस्थिति से जुड़ सकती है, कोई सड़क, यात्रा, नींद या परिचित व्यक्ति के अचानक अपरिचित लगने से। इस तरह पुस्तक डिजिटल समुदाय की मौखिक कहानी परंपरा को मुद्रित रूप देती है। इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव मान्यता का है। जिन लोगों ने अपने जीवन में कोई असमझी घटना महसूस की हो, उन्हें यह जानकर कम अकेलापन हो सकता है कि दूसरे लोग भी वैसी ही उलझन या डर बताते हैं। कास्त्रो का घोषित रुझान भी अनुभव भेजने वालों को सुनने और उनकी बात को स्थान देने का है, लेकिन सामुदायिक स्रोत की सीमा भी उतनी ही स्पष्ट है। व्यक्तिगत बयान स्वयं में प्रमाण नहीं होते, और किसी घटना का भावनात्मक असर उसकी तथ्यात्मक पुष्टि के बराबर नहीं है। इसलिए पुस्तक को अभिलेखीय अनुसंधान के बजाय लोक विश्वासों, निजी स्मृतियों और इंटरनेट युग के डरावने कथानक का संग्रह समझना अधिक सटीक है। इसकी विश्वसनीयता अनुभव की भावनात्मक सच्चाई में है, न कि हर दावे की जांच में। तीसरा, भूतों से समय विचलन तक भय की अनेक श्रेणियां, संग्रह केवल एक प्रकार के अलौकिक डर पर निर्भर नहीं करता। समीक्षाओं और विवरणों में भूत, दानवी या अनचाही मौजूदगियां, नाइट वॉकर्स, विचित्र स्वप्न, समय के असामान्य अनुभव और ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें लोग वास्तविकता की गड़बड़ी कहते हैं। इस व्यापक दायरे का अर्थ है कि पुस्तक भय को किसी एक धार्मिक, वैज्ञानिक या लोक कथात्मक ढांचे में सीमित नहीं करती। पाठक को अलग अलग प्रकार की बेचैनी मिलती है, कभी किसी अदृश्य उपस्थिति का डर, कभी अपनी स्मृति पर संदेह, और कभी स्थान तथा समय के भरोसेमंद लगने वाले क्रम के टूटने की अनुभूति। कथाओं को ढीले विषयगत खंडों में रखा गया है, जिनके नामों में वीड वाइव्स और इट वजेंट अ ड्रीम जैसे संकेत शामिल है। यह वर्गीकरण पाठक को बताता है कि अनुभवों का अर्थ अंतिम रूप से तय नहीं है, पर उनकी भावनात्मक बनावट समान हो सकती है। उदाहरण के लिए, स्वप्न से जुड़े वृत्तांत जागने और सोने की सीमा को अस्थिर बनाते हैं, जबकि समय विचलन वाली कथाएं कारण और क्रम की हमारी आदत को चुनौती देती है। विविधता संग्रह को एकरस होने से बचाती है, साथ ही अत्यधिक अलग विषयों का साथ होना यह भी दिखाता है कि ग्लिच शब्द एक छतरी की तरह काम करता है, जिसके नीचे कई असंबद्ध लेकिन विचलित करने वाले अनुभव रखे जाते हैं। चौथा, लघु कथा और पॉडकास्ट जैसी प्रस्तुति का प्रभाव। इस पुस्तक की कथाएं सामान्यतः बहुत छोटी है और समीक्षकों ने उन्हें लगभग 5 से 8 मिनट में सुनी या पढ़ी जा सकने वाली कहानियों जैसा बताया है। यह संरचना कास्त्रो के सोशल मीडिया और कथावाचन आधारित काम से स्वाभाविक रूप से जुड़ती है। हर वृत्तांत तेजी से एक असामान्य परिस्थिति बनाता है, सीमित विवरण देता है और अक्सर प्रश्न या झटके के साथ समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप पुस्तक को एक लंबे कथानक की तरह पढ़ने के बजाय अलग अलग सत्रों में पढ़ना अधिक अनुकूल हो सकता है। लघुता का लाभ गति है। पाठक को पृष्ठभूमि, पात्रों और समाधान की लंबी तैयारी से नहीं गुजरना पड़ता। डरावने अनुभव का केंद्रीय क्षण सीधे सामने आता है, जो विशेषकर श्रव्य रूप में प्रभावी हो सकता है। कास्त्रो स्वयं ऑडियोबुक का वाचन करती है, इसलिए उनकी स्थापित कहानी सुनाने की शैली वहां अतिरिक्त महत्व रखती है। दूसरी ओर यही प्रारूप कुछ पाठकों के लिए सीमा बनता है। संक्षिप्त कथाएं अचानक समाप्त या अपर्याप्त विकसित महसूस हो सकती है और जो व्यक्ति विस्तृत जांच, गहरे पात्र चित्रण या निर्णायक समाधान चाहता है उसे निराशा हो सकती है। इसीलिए पुस्तक की गुणवत्ता को उसके उद्देश्य से परखना चाहिए। यह विस्तृत हॉरर उपन्यास नहीं बल्कि छोटे तनावपूर्ण अनुभवों की श्रव्य मौखिक लय वाला संकलन है। अंत में जिज्ञासा और आलोचनात्मक विवेक के बीच पाठ की संतुलन पुस्तक का सबसे उपयोगी पाठ यह नहीं कि हर विचित्र घटना के पीछे अलौकिक कारण है, बल्कि यह दिखाती है कि मनुष्य असंगत अनुभवों को अर्थ देने के लिए किन कहानियों और रूपकों का सहारा लेता है। जब कोई व्यक्ति किसी घटना को ग्लिच कहता है तो वह अक्सर यह बता रहा होता है कि उसकी सामान्य व्याख्या पर्याप्त नहीं लग रही। यह अनुभूति वास्तविक हो सकती है भले ही उसके कारण पर सहमति न हो। कास्त्रो के संकलन में इसी भावनात्मक तनाव का आकर्षण है। पाठक के लिए संतुलित दृष्टि आवश्यक है। एक और, इन वृत्तांतों को तुरंत उपहास में बदल देना अनुभव बताने वाले व्यक्ति की उलझन और भय को नजरअंदाज कर सकता है। दूसरी ओर बिना जांच हर दावे को तथ्य मान लेना स्मृति, धारणा, संयोग और सुझाव की मानवीय सीमाओं को भूलना होगा। संग्रह स्वयं अनुभवों के रहस्य को खुला रखकर इस दोहरे पाठ की जगह बनाता है। इसकी कहानियां यह सोचने को प्रेरित कर सकती है कि भय में स्मृति कैसे काम करती है, इंटरनेट समुदाय निजी अनुभवों को कैसे साझा अर्थ देता है और अनिश्चितता मनोरंजन का प्रभावी साधन क्यों बनती है। अतः पुस्तक का मूल्य प्रमाणित, परामानसिक ज्ञान में कम और अज्ञात के प्रति हमारी सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को देखने में अधिक है। निष्कर्ष में ए ग्लिच इन द मैट्रिक्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें छोटी डरावनी कथाएं, कथित वास्तविक अनुभव, इंटरनेट क्रीपी पास्ता और पॉडकास्ट जैसा कहानी वाचन पसंद है। एंटी मैट्रिक्स के पहले से मौजूद अनुयायियों के लिए इसका आकर्षण विशेष होगा, क्योंकि पुस्तक उनकी परिचित आवाज, सामग्री के स्रोत और प्रस्तुति को अधिक स्थायी रूप में सामने लाती है। भूतों, असामान्य स्वप्नों, समय विचलनों और अनजानी मौजूदगियों में रुचि रखने वाले पाठक भी इसे छोटे छोटे अंतरालों में पढ़ सकते हैं। इससे मिलने वाला व्यावहारिक लाभ किसी परामानसिक दावे की पुष्टि नहीं बल्कि अनुभव और व्याख्या के बीच अंतर को समझने में है। पुस्तक दिखाती है कि लोग अनिश्चित, डरावनी या असंगत घटनाओं को साझा करने के लिए ग्लिच जैसे आधुनिक रूपक का उपयोग कैसे करते हैं। बौद्धिक रूप से यह पाठक को 2 प्रश्नों के साथ छोड़ती है, किसी अनुभव का निजी असर कितना प्रबल हो सकता है और उसके कारण के बारे में हम कितने निश्चित हो सकते हैं। समान श्रेणी की पुस्तकों से इसका अंतर इसके स्रोत और स्वर में है। यह न तो शोध आधारित परामानसिक जांच है, न ही एक लेखक द्वारा रचा गया निरंतर हॉरर उपन्यास। यह सोशल मीडिया समुदाय से निकले अनुभवों, छोटे विषयगत खंडों और कास्त्रों की कथावाचक पहचान का मिश्रण है। जो पाठक विस्तृत समाधान या प्रमाण चाहते हैं उन्हें इसकी सीमाएं स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन जो असमझे अनुभवों की तेज, विविध और बातचीत जैसी प्रस्तुति चाहते हैं उनके लिए यह संग्रह अपनी अलग पहचान रखता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेसिका कास्त्रो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।